नमो भगवते वासुदेवाय। सो भगवत गीता अध्याय 20, श्लोक कौन सा है आज अध्याय 20 का, कौन बताएगा? यस, हाँ 20 अध्याय है नहीं इसमें? ओके, एक बार ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे था कनॉट प्लेस में, तो वहां पर मुझको एक मुस्लिम मिशनरी का व्यक्ति मिला मेरे को, तो मुझको पता नहीं था ये मुस्लिम मिशनरी का है, तो मैंने उसको दी भगवत गीता। मैंने कहा सर भगवत गीता फॉर यू, तो उसने बोला कि उसने कोई क्रिटिसिज्म दिया, उसने बोला कि जो है आप ये गीता बांट रहे हैं, आप लोग खुद गीता फॉलो करते नहीं। मैंने अच्छा भाई ऐसा क्यों? कहते हैं आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया गीता के अंदर, आप लोग मूर्ति पूजा करते हो। अच्छा कौन से श्लोक में? मैंने इतनी बार पढ़ी, मुझे मिला नहीं कोई श्लोक अभी तक। कहते हैं गीता में एक श्लोक है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कौन से चैप्टर में है, मैं थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। कहता है ये 20th चैप्टर में है या फिर 21st चैप्टर में है। मैंने कहा ये लो खोल के, बस वो चैप्टर खोल दो, श्लोक खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता के अंदर 18 अध्याय है। तो हम लोग कौन से अध्याय पे हैं? ध्यान से बताइएगा, योग से बताइएगा, हैं? ध्यान योग, थैंक यू। ओके, ध्यान योग। तो हमने पिछली बार किया था 17वां श्लोक, राइट? सॉरी 18वां श्लोक, आज हम 19वां श्लोक करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसको बोलना चाहे दीपो निवातस्थो शब्दार्थ, यथा जिस तरह दीपक निवातस्थ वायु रहित स्थान में नहीं इंगते हिलता डुलता सा यह उपमा तुलना स्मृता मानी जाती है योगिनः योगी की। यतचित्तस्य जिसका मन वश में है, युञ्जतः निरंतर संलग्न योगम ध्यान में आत्मनः आध्यात्म में। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मेरे पीछे बोलिए, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा महीयम ददाति स्वपदांतिकम वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो इष्टपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद और ही अच्छा श्लोक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो ये जो है वास्तव में कोई चीज कैसे बताई जाए, ये भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि स्थिर हो गया है, जिसकी चेतना स्थिर है, स्थिर मतलब हम एक आम व्यक्ति के लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, एनालॉजी से समझा रहे हैं, यानी कि इस दुनिया की एक वस्तु से जो है एक कंपैरिजन देते हैं और कहते हैं इस तरह से ऐसा होता है, लाइक दैट। तो जो है तो इस तरह से उपमा जब दी जाती तो हम समझ पाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को बहुत प्यास लगी, उसको पानी पिला दो, बहुत प्यास है बच्चा। तो इस तरह की प्यास हमारी होनी चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए, थोड़ा सा मिल जाए, बस हमें मिल जाए। सो एनालॉजी है ना, जैसे कि अगर किसी डॉक्टर को समझाना हो कि हार्ट में ब्लॉकेज है और आर्टरीज में है, किस तरह से प्रेशर बनता है, तो एक आम व्यक्ति समझाओ तो वो समझेगा नहीं, क्या कैसे प्रेशर कैसे बन जाता है वो, तो कहेगा, तो डॉक्टर एक एनालॉजी से समझाएगा कि जैसे आप नलके से नलका खोल दो, पाइप है लगा हुआ, ठीक है, उसको अगर आप ना दबाओ तो पानी तेजी से निकलता है उसमें से, है ना। अगर दूर पानी करना हो तो क्या करते हैं, उसे आगे अंगूठा लगा देते हैं ना, है ना, तो पानी दूर तक जाता है। तो ये एक एनालॉजी है कि जिस तरह से नलके का पाइप है उसका दबाव तो प्रेशर से जाता है, पानी बाहर निकलता है, उसी तरह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो फिर उसमें क्या आता है कि जो नसों में सॉरी आर्टरीज में अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो ज्यादा तेजी से खून बहता है, उसको कहते हैं बीपी हाई है इसका, इसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो क्या एनालॉजी से हमने एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हमने समझा है ना, तो यहाँ भगवान भी जो है इस एनालॉजी का तरीका अपना रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ताकि अर्जुन तक समझ जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग समझ जाए। तो यहाँ एनालॉजी दी जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से जो दीपक होता है, दीपक जिसमें जहां कोई हवा ना हो, एकदम एकदम क्लोज रूम हो, तो वहां दिया कैसे जलता है, बड़ा ही स्टेडीली जलता है, यानी बड़ी स्थिरता के साथ जलता है, ऐसे हिलता डुलता नहीं है, ऐसे आराम से उसकी जो लॉ होती है जलती रहती है ना। जैसे दिवाली के दिन जो दिए आप घर के अंदर रखते हैं और जो दिए बाहर के जो घर के बाहर रखते हैं, बाहर उनके बुझने का डर रहता है ना, वो हिलते डुलते भी रहते हैं, हवा चली तो बुझ गए है ना, लेकिन जो घर के अंदर जहां लोग पूजा करते हैं तो वहां जो दिया होता चलता रहता है। कुछ तो होते हैं जो रात भर जलाते हैं उस दीपक को, तो जलता रहता है, क्यों, क्योंकि वो विंडलेस, यहाँ वहां कोई हवा नहीं है, राइट, वहां कोई हवा नहीं है, लेकिन बाहर जो है हवा होती है। तो ये दीपक की बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी है यहाँ पर भगवान ने कि दिया जिस तरह से हवा रहित वायु रहित वातावरण में एकदम स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का जो चित्त होता है वो स्थिर रहता है, वो विचलित नहीं होता। तो इस तरह से जो है श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंध में भी आता है कि वास्तव में जैसे कि हवा का भंवर नहीं होता, आपने देखा किसी ने हवा देखा, बहुत जो हवा का होता है भवंडर बोलते हैं, उतना तेज चलता है कि घरों को उड़ा देता है वो, ऐसे भंवर के बीच में अगर कोई फंस जाए तो वो क्या देख पाएगा, ऐसे ही करता रह जाएगा है ना, कुछ नजर नहीं आ रहा उसे है कि धूल है चारों और बस हवा घूम रही है, तो वो क्या करेगा, वो देख नहीं पाएगा कि वास्तव में बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि भंवर इतना ज्यादा तेज होता है। उसी तरह से भौतिक इच्छाओं का भंवर जो है एक एक भौतिक व्याधी व्यक्ति की चारों इतना तेज होता है कि वो देख ही नहीं पाता सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या रिलेशनशिप है, वो देख ही नहीं पाता सच्चाई। तो इसलिए जो है यहाँ पर उसी एनालॉजी को फिर से यहाँ बताया जा रहा है यहाँ भगवद गीता में कि जिस तरह से हवा रहित, कोई हवा ना हो, तो जिस तरह दीपक बड़ी स्थिरता से जलता है उसी तरह से जो योगी होता है उसका चित्त बड़ा ही स्टेबल हो जाता है, बहुत ही स्थिर हो जाता है, अनडिस्टर्ब्ड रहता है, बिना विचलित हुए ऐसा व्यक्ति रहता है, स्टडी। तो ये बताया गया। तो भगवान वो तो ऐसा नहीं कि भगवान ने इससे पहले वो भी बात की है कि वास्तव में जीव के जीवन में क्या क्या संघर्ष आते हैं। जब हम तीसरे अध्याय में थे तो भगवान ने वहां पर काम वासनाओं की बात भी की है। जब अर्जुन ने पूछा भगवान हम पाप नहीं करना चाहते, हम पाप क्यों कर बैठते हैं, तो भगवान उस वहां पर लस्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो यानी कि जीव के जीवन में जो संघर्ष है आध्यात्म में आगे बढ़ने का, उस संघर्ष को भगवान जानते हैं और संघर्ष में सफल होने के बाद वो जिस स्थिति को प्राप्त होता है भगवान उसको आज यहां बता रहे हैं। तो स्थिरता कैसे प्राप्त होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भगवान ने स्थिरता का जो है लक्षण बताया है कि जो उसकी चेतना है एक्चुअली जो कि दिए की जो लॉ है वो क्या है, योगी की चेतना, उसकी चेतना बड़ी स्थिर हो गई है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन में ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा उसका योगी का मन जिसका योगी जिसका मन वश में है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में नहीं है वो कभी भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकता, यानी कि आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। यानी मन को वश में करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और हमने एक बार आपको बताया था कि मन क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है इसलिए हम इसको वश में नहीं कर सकते। ये किसकी शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की भौतिक शक्ति का ही तो विस्तार है हमको, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार है। तो इसको कंट्रोल वास्तव में भगवान ही कर सकते हैं यदि हम भगवान की शरण में जाएं। तो जैसे आपके घर में अगर से कोई रेडियो है वो खराब हो जाता है तो आप उसे ठीक करना चाहोगे ना, हो सकता है आप और ज्यादा गड़बड़ी कर बैठो, तो आप क्या करोगे, तो उस कंपनी का जो इंजीनियर है उसको बुलाते हो, है ना, कि हमारी वीडियो कॉन की वॉशिंग मशीन है जी खराब हो गई, कुछ ब्लॉक हो गया उसमें, तो वीडियो कॉन का इंजीनियर कोई एक्सपर्ट आएगा तो वो उसे आके ठीक करेगा क्योंकि वो उसी का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जो मन है क्योंकि वो भगवान की शक्ति है इसलिए इसको वश में करना हमारे बस की बात नहीं कि हम अपने दम पे कंट्रोल करेंगे इसे, बिल्कुल नहीं। कलयुग में ऐसी कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जो कि आपको ये कहता है कि हम आपको तरीका बताते हैं कैसे मन को वश में करना है, इसका मतलब वो आपको उल्लू बना रहा है। सिंपल सी बात, मन को वश में किया ही नहीं जा सकता, विशेष रूप से कलयुग में। इसको वश में करने का सिर्फ एक ही साधन है वास्तव में, कि भगवान की शरण में जाना। तो यहां योगी का मतलब और कुछ नहीं है, भक्ति योगी है। जब तक कोई भक्ति योगी नहीं बनता तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, चाहे कोई अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी हो, भले किसी में कितना ज्ञान हो, कोई कितने अच्छे एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, लेकिन मन वश में तब तक नहीं आएगा जब तक वो परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है शौबरी मुनि का। शौबरी मुनि जो है उन्होंने कई हजारों साल की तपस्या कर रहे थे, वो पानी के अंदर यमुना माई के अंदर बैठे थे वो और तपस्या कर रहे थे। तो सिर्फ उनकी नजर जो है दो मछलियों को आपस में संभोग करते हुए जो है बस दृष्टि पड़ गई कि द यूनियन ऑफ टू फिशेस, उसी से उनका मन विचलित हो गया। एंड ही केम आउट ऑफ द वाटर एंड ही मैरिड 1000 times, इतना ज्यादा विचलित। जबकि ऐसा व्यक्ति जो कि पानी के अंदर डूब के तपस्या कर रहा है, भाई बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है। कोई स्विमिंग पूल में जाए कितनी देर अंदर रह सकता है, 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन वो उन्होंने कई सालों की तपस्या कर रहे थे पर वो बेचैन हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने यमुना माई में खुद को डुबोया था लेकिन उन्होंने हृदय को नहीं डुबोया था यमुना माई में, यानी कि भक्ति योग की शरण नहीं ली थी उन्होंने, तो विचलित हो गए। और दूसरी तरह भगवान के भक्त कर्दम मुनि का भी एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, जहां पर कि उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको विचलित करने के लिए, जब वो तपस्या में बैठे थे तो इंद्र आए थे, इंद्र कहीं अप्सराओं को लेके आए अपने साथ, ये कर्दम मुनि आपके लिए है, एज मेनी जितनी आपको चाहिए बताइए। तो कर्दम मुनि ने कहा कि अच्छा ये आप मेरे लिए लिखे आए, चलो आप मेरे लिए लिखे आए, मैं भी तो कुछ आपको दूं ना। तो कर्दम मुनि ने अपने शरीर से जो है कहीं उनसे भी हजारों गुना सुंदर अप्सराएं विस्तार कर दी, कहते हैं इंद्र ये आपके लिए। तो इंद्र ने कहा अरे ये तो मेरी वाली से भी अच्छी है, तो अपनी अप्सराओं के साथ वो कर्दम मुनि की भी अप्सराओं को ले गए थे। तो कर्दम मुनि वापस जो है भगवान के ध्यान में लग गए। तो पॉइंट इज दैट कि जब तक कोई भक्ति की शरण नहीं रहता तब तक जो है उसका मन वश में नहीं आ सकता। शौबरी मुनि जो है वो सिर्फ ध्यान लगा रहे थे लेकिन उन्होंने जो है अभी भक्ति की शरण नहीं ली थी। तो ये जो स्टेडीनेस है ये जो है ये हर एक भक्त हर एक साधक का एक एक जो है संघर्ष होता है। श्री प्रभुपाद ने एक बार एक भक्त को कहा आई कैन लिबरेट यू राइट हियर राइट नाउ बट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द स्वीट स्ट्रगल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं चाहूं तो तुमको अभी ही कि ही मैं तुमको मुक्त कर सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का जो मीठा संघर्ष है तुम उसका अनुभव करो। प्रभुपाद जी ने कहा तो ये जो संघर्ष है वास्तव में ये संघर्ष और कुछ नहीं है, ये जो है स्थिरता का संघर्ष है। जब स्थिरता आती है तो उसके बाद जो है योगी का मन जो है चित्त जो है वो ऑलमोस्ट प्योर हो गया होता है। जब वो स्थिरता के स्तर पे आता है तो 80-90% उसके कलमश हृदय के निकल गए। काम क्रोध लोभ मोह मन मत सारे उसके 80-90% निकल गए उसके। लेकिन इस स्तर पर पहुंचना जो है ये बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। तो कोई कह सकता है प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम ये कैसे पहचाने कि अभी हम स्थिर हुए हैं कि हम अभी अस्थिर हैं। कुछ लक्षण होने चाहिए ना, जैसे कोई बोले जी मैं बीमार हूं ऐसा क्या लक्षण होगा। ये देखो तुम्हारा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, शरीर में कमजोरी होनी चाहिए, हो सकता है आंखों में जलन भी हो। तो ये सब हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, यानी तुम बीमार हो, है ना। यानी कुछ लक्षणों से हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति जो है बीमार है कि नहीं। उसी तरह से जो भक्ति है या फिर अध्यात्म का जो अभ्यास है उसमें कोई व्यक्ति स्थिर हुआ है या नहीं हुआ है उसे कुछ लक्षण है। एक लक्षण है उसमें इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से संघर्ष, यानी इंद्र तृप्ति की जैसी कोई अगर फैसिलिटी मिलती है तो मन विचलित रहता है, अरे तो भी तो बहुत अच्छा है, दिस वेरी नाइस, तो उसी बात विचलित हो जाना इंद्रियों का। ऐसे एक भक्त ने शेयर कर रहा था जो नया नया जुड़ा था तो वो चार माला करता था तो हरे कृष्णा कर रहा था तो मार्केट से होकर गुजर रहा था। तो जो चौमिन वाला होता है ना तो उसका एक तरीका होता है चौमिन बनाने का, ठड़क ठड़क है? तो वो ठड़क ठड़क उसके कान में पड़ी। एट दैट ही बिकेम डिस्टर्ब्ड, निकल नहीं नहीं चौमिन इसमें तो प्याज होता है, नहीं ये गलत है, नहीं हरे कृष्ण ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड। तो हले ही घर गया वो, लेकिन वो चार माला जो उसने की उस तक तो यही सोचता रहा। तो इंद्र तृप्ति के साथ संघर्ष, कभी व्यक्ति सफल होता है उस संघर्ष में, कभी असफल होता है इस संघर्ष में। जब सफल होता है कहते हैं मैंने कर लिया, यस यस यस, और जब वो विफल होता है तो उसे गिल्ट होता है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत है, मैं क्यों करता हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसे मैंने क्यों किया, मैं पागल हो गया था क्या। उसको बहुत बहुत उसको जो है दुख लगता है उसे। तो ये संघर्ष है इंद्र तृप्ति के साथ, कभी वो सफल होता है कभी वो असफल होता है। से मूवी को लगी है जिसमें 3D इफेक्ट्स हैं और वो सब बहुत साउंड और आसपास घर वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अरे क्या बात है उसमें, अरे बस वो तो जीवन में नहीं देखा तो लाइफ इनकम्प्लीट है, हैं? अच्छा नहीं, अरे कृष्ण। तो इंद्र तृप्ति के साथ संघर्ष, इंद्र तृप्ति के साथ जो संघर्ष है उसका, तो चाहे जैसे चार नियम भी हैं, तो चार नियम भी है कभी वो फॉलो कर पाता है तो कभी वो टूट जाते हैं उससे। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी है, इच्छाएं भी हैं, तो कहते हैं हाँ, तो फिर वो क्या कहता है, तो कभी कभी जो है नियम उसे टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस साधक का संघर्ष चलता है किसके साथ? इंद्र तृप्ति के साथ, बैटल विद सेंस एंजॉयमेंट। समटाइम्स ही सक्सेसफुल, समटाइम्स ही फेल्स, और से इज अ फेलियर, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये अगर ये हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, ये एक लक्षण है, उन कई लक्षणों में से एक लक्षण ये है, बैटल विद सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं के साथ संघर्ष। एक और लक्षण है इसका, अपनी प्रतिज्ञाओं का हर स्थिति में पालन ना कर पाना। जैसे कि कोई सोचे, कई बार लोग सोचते हैं जैसे कि इसे अब से सारी एकादशी निर्जला, भाई तपस्या जब तक नहीं करेंगे तब तक तो शुद्धि है नहीं, तो सारी एकादशी निर्जला, अगली एकादशी आई निर्जला रखी, बड़ा मुश्किल हुआ, पेट की आग ने खूब सताया, पेट अंदर घुस गया, हाँ शरीर तप रहा है, झेल लिया उसने, इस तरह से भाई अभी तो नया नया आपने किया था, 15 दिन बाद फिर से एकादशी आती है, फिर से उसने निर्जला रखा है। मंदिर में जो है प्रसाद बट रहा है, उसमें जो है उसमें कुट्टू के आटे के पकौड़े भी हैं, उसमें जो है उसमें साबूदाना भी है, उसमें आलू की टिक्की भी है, उसमें मौसमी का जूस भी है। कहता है तो सोचता है कि ऐसा करता हूँ, एक बार निर्जला करूंगा, एक बार प्रसाद पाऊंगा। तो वो जो अपनी प्रतिज्ञा है उनको निभा नहीं पाता, वो निभा नहीं पाता। सोचता है कभी, वो सोचता है कि मैं जो हूं मैं क्या करूंगा, अब से रोज 2 घंटा भगवद गीता पढ़ूंगा। जब तक अज्ञानता नहीं जाएगी ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। रोज 2 घंटा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, लेकिन 2 घंटा गीता पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ओके, तो कुछ दिन चलता उसका, 2 घंटा चला, 2 घंटा, एक दिन 1.5 घंटा, नहीं 2 घंटा, अगले दिन 2.5 घंटा पढ़ा उसने, फिर और पढ़ने की कोशिश करता है। एक दिन क्या हुआ, घर में गेस्ट आ गए, वो रात 11 बजे तक घर में टिके रहे, उसने पढ़ नहीं पाया और वो इतना थक गया, नींद आ रही है उसका, आज तो 15 मिनट हुए, कल मैं करूंगा पूरा। तो इस तरह से जो है कभी, तो वो संघर्ष करता है वास्तव में, अपनी प्रतिज्ञाओं को निभा नहीं पाता वो। तो ये दोनों में अंतर है, एक है अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से जूझना, और एक है क्या, प्रतिज्ञाओं को निभा ना पाना, जो कि आगे बढ़ने के लिए सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और वो जब इसको एग्जीक्यूशन में आता है इसकी, वो गड़बड़ी हो जाती है उससे आगे जाके। कहता है क्या प्रभु जी, पूछो मत, मैं बेकार हूं, सबसे बेकार डिवोटी इस कौन में मैं हूं प्रभु जी। उसको ये फीलिंग आती है, ऑफकोर्स इस फीलिंग से वो प्यूरिफाई होता है। तो द पॉइंट इज दैट ये एक सिम्टम है कि अभी भी उसके अंदर काम करो, लो मोह मद मत सारे अभी गुड क्वालिटी में है, गुड क्वांटिटी में भी है, गुड क्वालिटी में भी है। तो तभी जो है वो संघर्ष करता है, उसका जो है चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। एक और लक्षण है, अपने आश्रम की स्थिति को छोड़ के दूसरे आश्रम में जाना है। यार ये आश्रम तो बड़ा दुख, मतलब इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। देखो ब्रह्मचारी हो, सोचे यार मैंने विवाह नहीं किया, अगर मैंने अगर विवाहित जीवन का मैंने अगर अनुभव ही नहीं किया तो मैं कभी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से निकल नहीं पाऊंगा। एक बार मुझको भोग कर लेना चाहिए, फिर मैं छोड़ दूंगा और फिर मैं भक्ति में सीरियस हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, अपनी ब्रह्मचारी लाइफ अच्छी है, ब्रह्मचारी रहता हूँ तो ना भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। कहते पर वो सोचता है नहीं, लेकिन मेरे हृदय में इतनी कामुकता है, नहीं मैं जो है गृहस्थ हो जाऊं तो अच्छा रहेगा, फिर वो ऐसा सोचता है। तो इस तरह से उसका मन क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे कि वो नहीं होता है घड़ी में टोंग टोंग टोंग, ऐसा सोचता रहता है वो, मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, ये हो जाऊं वो हो जाऊं। ऐसी गृहस्थ है, गृहस्थ भी सोचता है मेरी पत्नी यार मेरी बैंड बजा के रखती है हमेशा, मैं कभी फोकस नहीं कर सकता अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, कभी नहीं कर सकता। इतना अच्छा होता कि मैं जो है संन्यास ले लूं, घर छोड़ के किसी कहीं चला जाऊं, कहीं अकेले मैं जहां पर मैं जप कर सकूं, कुछ मैं भक्ति कर सकूं। हाँ तो पता ही लगता है दिन कैसे बीतता है, शाम को आता हूँ मार्केट जाओ, घर में इनकी बात सुनो सुनो, दिन बीत जाता, कुछ कर ही पा रहा है, क्या बेकार है। वाइफ को भी लगता है कभी कभी, अरे ये मेरा पति एकदम डम्बो आदमी है, कुछ नहीं आता, मैं सोचा था ये मेरा बहुत बड़ा सहारा बनेगा भक्ति में, एकदम टुल्लू है एकदम, ये कितना अच्छा होता कि मैं अकेली होती ना, मैं योगी नहीं बन गई होती, मैं क्या निकम्मा आदमी मेरे साथ बांध दिया है। तो क्या करता है वो, तो ये भी अपना आश्रम चेंज करने की सोच रहे हैं, राइट, मतलब हम इस स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाएं तो शायद हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आश्रम बदलने से या अपनी वैवाहिक स्थिति या फिर अवैवाहिक स्थिति को बदलने से जो है कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, लेकिन वो हमेशा ही सोचता है अरे बड़ा दिक्कत है यार, बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, वहां चला जाऊं ना तो अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नजर आती है, वो घास हरी, मेरी सारी घास सूखी है एकदम, वो सुखी है मैं सूखा हूं, उसको ये लगता है। तो ये भी एक और लक्षण है अस्थिरता का, जो सोचता है कि ना परिस्थितियां बदल जाएंगी तो शायद मैं जो है भक्ति में आगे बढ़ूंगा, पर वास्तव में परिस्थितियों से जो है, ऑफकोर्स परिस्थितियां होती हैं दिक्कतें, लेकिन वास्तव में व्यक्ति की अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी गंभीरता वो वैल्यू करती है। तीसरा एक और लक्षण होता है ज्ञान का अहंकार हो जाना, कि हो सकता है अच्छी कुछ समय मंडे क्लास में आए या फिर कुछ कुछ गीता के कुछ अध्याय पढ़ लिए, लगा भाई अब तो हम भी कम लेंगे, अब तो हम भी किसी को सुना सकते हैं। तो ये जो अहंकार जल्दी आया था, थोड़ा सा इधर उधर कुछ सुन लिया, थोड़ा सा इधर कुछ पढ़ लिया तो लगा ज्ञानी हो गए, अगर ऐसा भाव भी आता है तो ये भी एक लक्षण है कि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम संघर्ष करने वाले उसमें हो, अभी तुम सिर्फ नहीं हुए, तो इस प्रकार के जो लक्षण है ये जो है हमको देखने चाहिए, ओके ये लक्षण बताए थे, इनमें से कौन कौन लक्षण है, ये वाला है, दूसरा वाला भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, सारे हैं, पूरा अस्थिर हूं, डावाडोल। तो ये जो है ये अस्थिरता के जो है वास्तव में लक्षण है, अस्थिरता के लक्षण है। तो एक बहुत ही अच्छी कथा आती है, एक आपने आलवार का नाम, किसने आलवार का नाम सुना, आलवार नहीं, कई आचार्य हुए तो रामानुजाचार्य जी का नाम सुना आपने, हाँ साउथ इंडिया में बहुत महान भक्त हुए, उनकी परंपरा में जो है उन्हीं की लाइन में उनसे पहले जो है महान भक्त हुए थे आलवार। उन आलवार में से एक आलवार थे तोंडरादी पोड़ी आलवार, ठीक है, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंस्ट्रक्टिव है, बहुत कुछ सीखने के लिए इस कहानी में। उनका नाम था विप्र नारायण वैसे, ठीक है, और भगवान विष्णु की सेवा करते थे तुलसी दल से, गंगा जल से, बड़ा सिंपल, मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड सिंपल व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल एकदम कहते ना कि एकदम ये तो एकदम मतलब एकदम इनोसेंट, मतलब कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, एकदम सिंपल, जस्ट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। साउथ इंडिया में जो है भगवान विष्णु भगवान नारायण की वो पूजा करते थे, तो बड़े फेमस थे, सब जानते थे विप्र नारायण भाई, मतलब वो भगवान भगवान और वो और जिंदगी और जीवन में कुछ नहीं जानता, वो सिंपल मैन। तो साथ ही में जो है उसी गांव में एक प्रोस्टिट्यूट भी रहती थी, बहुत फेमस, इतनी फेमस कि वो किसी को भी सेड्यूस कर सकती थी, किसी को भी जो है अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। तो उसी सहेली ने उसे कहा, तुम तो इतनी आकर्षक है, तूने बड़ो बड़ो को गिराया है, इस विप्र नारायण को तू विचलित करके दिखा तो जानो तुझे। तो उसने कहा चुनौती दे रही है मुझे, कहा चलो ठीक है। तो एक दिन आया तो बारिशों के दिन थे तो ना बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो ये जो वैश्या थी इसने जो है ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी और सर ढका और जो है बाहर तुलसी दल से मंजरी जो है तोड़ रही थी, तो एकदम भीग गई। तो विप्र नारायण ने देखा, इनके गार्डन में वो के बाहर सेवा कर रही थी वो, तो विप्र नारायण ने देखा, अरे अरे तुम तो बारिश में भीग रही हो, तुमको सर्दी लग जाएगी, अंदर आ जाओ। तो अंदर ले आए उसे और फिर जो है उसको कपड़े दिए, उनका ये तुम कपड़े पहन लो, और फिर विप्र नारायण जो है चले गए। तो अगले दिन आई कहती है कि आपके जैसे महान भक्त की अगर शरण मेरे को मिले, क्योंकि मैं तो वैश्या रही हूँ, मैंने तो जो है गलत काम ही किए हैं अब तक, यदि आपका आशीर्वाद रहे तो मैं पवित्र हो सकती हूँ। विप्र नारायण सिंपल पर्सन, कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब मिलकर विष्णु नारायण की सेवा करने के लिए तो हैं। तो उनके साथ लगती वो सेवा करते तो सेवा कर रही थी, तो सेवा करते हुए एक दिन क्या हुआ, क्योंकि बारिशों के दिन थे तो फिर से जो है वो बाहर सेवा करी तो वो भीग गई, तो विप्र नारायण थे वो भी सेवा करते हुए थोड़ा भीग गए। तो विप्र नारायण जो है बैठे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी आपने सुबह से इतनी आपने मेहनत की है मुझे, आप क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, क्या मैं आपके चरणों को दबा सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। कहते नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा मुझे मौका देंगे मेरा सौभाग्य होगा। ओके, उन्होंने अलाउ किया। तो पांव दबाते दबाते वो जानती थी आरटी किस तरह से जो है शरीर को उत्तेजित किया जाता है, तो उसने जो है उनको उत्तेजित किया और फिर उनके साथ उनको जो है पतन की ओर लिखी गई। तो ऑफकोर्स तो उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, इट वॉज एक्सीडेंटल, क्योंकि बहुत भोले थे विप्र नारायण। तो ये खबर जो है तो अब उसके अगले दिन ही उसने कहा कि बस मेरा काम हो गया, मेरा काम था विप्र नारायण को विचलित करना, उसका पतन कराना, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये खबर जो है चारों ओर फैल गई और साथ ये खबर ही फैल गई कि जो है विप्र नारायण ना सिर्फ चरित्रहीन है बल्कि उसका जो उसने जो है कुछ धन भी चुराया हुआ है मंदिर से। तो जो है उनके ऊपर कई लांछन लगाई गई। तो लक्ष्मी माँ नारायण के साथ बैठी थी, कहती भगवान आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ, तो भक्त है। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त की रक्षा कैसे करनी है, उसको किस तरह से मेरी और तेजी से लेके आना है ये मैं जानता हूँ। तो विप्र नारायण उसके बाद जो है विप्र नारायण को ये बुद्धि आई दी भगवान ने, उन्होंने कहा ये मैं क्या कर रहा था, मैं तो नारायण की सेवा में लगा हुआ था और मैं किस तरह से ये जो है मैं गलत कार्य कर रहा था। बड़ा उन्हें गिल्ट लगा, बहुत उन्हें जो है अंदर से कचोटने लगे अपने आप को। उसके बाद जो है उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई, पहले तो वो कर रहे थे एज अ रूटीन एक्टिविटी, तो उन्होंने कहा कि अब से मेरा नाम जो है तोंडरादी पोड़ी है। तोंडरादी पोड़ी का मतलब होता है भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों की धूल, मैं उसका दास हूं, उस धूल का दास हूं जो कि भगवान के भक्तों की चरणों की धूल है, मैं उसका दास हूं। क्योंकि उन्होंने जो है वास्तव में भगवान के भक्तों से कहा कि मेरा पतन हो गया, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो सकता है, तो उनके चरणों की धूल ली उसने, उन्होंने अपने माथे पे रखी। तो ये एक जो है अनस्टेडीनेस से स्टेडीनेस में आने का एक एग्जाम्पल है, जिसमें एक व्यक्ति ने संघर्ष किया और उससे गलती हुई और वो गिरा, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो आगे बढ़ा। एक कहावत है, विनर इज नॉट द वन हु हैज नेवर लॉस्ट इट, विनर इज द वन हु नेवर गिव्स अप। यानी कि विजेता वो नहीं है जो कि कभी हारा नहीं है, विजेता वास्तव में वो है जो कि कभी संघर्ष को छोड़ता नहीं है। तो भक्त है, भले ही उसके जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी ही अस्थिरता रहे, चाहे पारिवारिक हो, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, लेकिन उसको एक बात पता होती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा। मैं भले उस सेवा से बहुत दूर हूं, लेकिन मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य तो पता है, इसलिए उसके लिए जो है वो कार्य करता है बार 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 बार। तो धीरे धीरे जो है वास्तव में उसके जीवन में स्थिरता आती है। मेरे ख्याल से मैंने यहां बताया था एक बार कि भक्ति का जो पाथ है, जो पथ है उसका, ये एक प्लेट्यू की तरह, पठार की तरह। पठार किसने देखा है, जो होता है पठार कैसा होता है, पठार ऐसा होता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, किसी को याद है? यस। तो ये जो ऊपर की जगह है ये स्थिरता है वास्तव में। यहां पर जो है जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो बहुत बार गिरता है, हाँ, तो ये बहुत ही अस्थिर अवस्था है। कई बार ऐसे कार्य करना चाहता है, नहीं करना चाहता, वो कर बैठता है, क्योंकि वो अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से संघर्ष कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड, यानी कि बाहर जो है संघर्ष है उसका, एक संघर्ष उसका अंदर चलता है अपने आप से, अपने पागल मन से, अपने अनियंत्रित मन से उसका जो है संघर्ष चलता है। तो इसको जो है वास्तव में क्या कहा जाता है, ये भी एक, ये जो संघर्ष है वास्तव में ये संघर्ष उसे एक तरह से शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष वो किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए। ये संघर्ष किसके लिए कर रहा है? वो कृष्ण के लिए, कि एक दिन जो है मैं भगवान की भक्ति में बड़ा स्टेडीली लगूंगा, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं हारता हूं, मैं गिरता हूं, लेकिन मैं फिर से मेरे को आगे बढ़ना है। आई थिंक मैंने इसी क्लास में शायद बॉक्सिंग रिंग का भी एग्जांपल दिया था, हाँ, कि भगवान कृष्ण जो है ऑडियंस में बैठे हुए हैं और इस बॉक्सिंग रिंग में जो है दो बॉक्सर है, एक हम और एक हमारा अनियंत्रित मन। तो बॉक्सिंग चल रही है, अनियंत्रित मन बहुत पावरफुल है वो घूसा मार मार के बार बार गिराता है हमें, धूम, और हम नीचे गिरे होते हैं, आह, फिर हम उठते हैं, लेकिन हमें जो है उठना नहीं छोड़ना, हमें उठना नहीं छोड़ना। और वास्तव में जब भक्ति में जब कोई लगता है, तो अगर कोई अस्थिरता उसके जीवन में आती भी है, से वो कभी अगर से वो ऐसा कोई कार्य कर बैठा जो कि नहीं करना चाहिए था और वो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन रजोगुण के द्वारा या अंदर की इच्छाओं के द्वारा कर बैठा वो, तो उससे भी जो है भगवान उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे कहावत है, व्हेन यू फॉल यू पिक समथिंग अप। जैसे कोई अगर कोई नीचे भी गिरे तो कम से कम मिट्टी तो हाथ में उठाता ही है ना। तो हम जब नीचे गिरते हैं तो भी हाँ, तो हम उठते हैं वास्तव में, तो कुछ अपने हाथ में लेके आए, है ना, लेते हैं। तो इस तरह से अगर कोई सिंसेरिटी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि जान मुझे गिर रहा है, गिर जाता हूं कुछ सीखूंगा, है ना, और फिर बार बार गिर रहा है वो, ऐसे में कुछ नहीं सीखा वो, यानी कपट में अभी वो, लेकिन वो ना चाहते हुए अपनी कमजोरी के कारण जब अस्थिरता उसके जीवन में है, तो उसकी अस्थिरता से ही भगवान उसको सिखाते हैं, देख तूने यहां ये गलती की, कल तूने जो है प्रसाद को ठीक कॉन्शियसनेस के साथ नहीं लिया, इसीलिए जो है आज तेरा जो है पेट, तूने अपनी जीवा की लालसा के लिए तूने प्रसाद पाया, इससे जो है तेरी इंद्रियां तीव्र हो रखी है, एजिटेटेड हो रखी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, जीवेर लासा ये इति उति धाय, शिष्णोदर परायन कृष्ण ना ही पाए। जीवेर लासा ये इति उति धाय, जो जीवा की लालसा के लिए यहां वहां भागता है, शिष्णोदर परायन, शिष्ण यानी पेट और शिष्ण और उधर, शिष्ण यानी कि जेनिटल्स और उधर यानी पेट, तो अब वो जो है ये भी उसके जाते हैं, ये भी अनियंत्रित हो जाते हैं। शिष्णोदर परायन, नारायण का परायन नहीं है वो, क्या है, शिष्णोदर परायन, कृष्ण ना ही पाए। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा पाता, क्योंकि वो अभी जो है अस्थिर अवस्था में, उसकी जीवा, उसकी जो उसकी जीवा है या उसके नेत्र है या जो उसका उधर है, उसको जो है उन अवस्थाओं में लेके जाते हैं जो कि अनुकूल नहीं है। जैसे कोई बिलबोर्ड होता है, उस पर कोई वल्गर फोटोग्राफ है, उसको पता है नहीं वल्गर फोटोग्राफी नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसका मन चला जाता है और वो एक दो सेकंड के लिए देखता है, नहीं नहीं गलत है, एंड देन ही मूव्स ऑन। तो अस्थिरता है, लेकिन क्योंकि वो स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है तो भगवान जो है उसके चित्त को धीरे धीरे निर्मल कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो है वास्तव में इस संघर्ष को नहीं छोड़ना, इस संघर्ष को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये संघर्ष है वास्तव में, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए जितनी जद्दोजहद की जाती है, यानी कि उसका फल बहुत बहुत मीठा निकलने वाला है, बहुत बहुत मीठा निकलने वाला है इस संसार में। हालांकि ऐसा नहीं होता, इस संसार में जरूरी नहीं है, इस संसार में जो आपके कर्म के फल हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कोई अध्यात्म में, कोई भगवान की भक्ति में लगाए तो वहां लागू होता है। तो ये इसका ये जो फल है ये इतना इतना मीठा है, इतना इतना मीठा है, इसलिए जो है इसको इसको चाहने के लिए, इसको पाने के लिए जो है जद्दोजहद करता है साधक, लेकिन इसको लगे रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ऐसे नहीं कि इस रेसलिंग मैच में जो कि मन और पागल मन और जो जीव है उसके बीच में चल रहा है, भगवान बस देखते रहे, हाँ भाई बहुत बढ़िया खेलते रहो, ना ना भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान जो है देख रहे कि लड़ रहा है इस पागल मन से, लड़के इसको हरा के मेरी शरण में लाना चाह रहा है, तो भगवान अपनी कृपा देते हैं उसे, और उस कृपा से वो अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। जैसा हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वास्तव में इट इज नॉट दैट कि हम ना मुंह जो हिला रहे हैं हम उससे अपने मन को वश में कर सकते हैं, नहीं। नहीं तो हरे कृष्ण क्या है, तो जीवा और जबड़ा ही तो हिल रहा है और क्या, तो जीवा और जबड़ा हिलाने से क्या मन वश में आ जाएगा, नहीं। लेकिन जब साधक बड़े ध्यान पूर्वक शरणागति के भाव से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है कि ओ हरिनाम आप ही मेरी एकमात्र शरण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस भाव के साथ, जब शरणागति के भाव से, विनम्रता से जब हरि नाम की शरण लेता है वो, तो नाम प्रभु देख रहे हैं राधा कृष्ण की जो है शरण लेने का बहुत प्रयास कर रहा है, तो अपनी कृपा देते हैं, उस कृपा से हम जो है आगे बढ़ते हैं और स्थिरता धीरे धीरे आती जाती है। इसलिए जो है जो जो अब जो यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ अच्छा समय बिता चुके हैं भक्ति में, वो इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ इतने साल पहले अगर ये टेम्पटेशन मेरे को बहुत खींचती थी, आज मुझे खींचती है लेकिन इतना नहीं, या एक टेम्पटेशन जो उस समय मेरे को बहुत आकर्षित करती थी आज वो है ही नहीं, लाइक दैट। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं भक्ति की शक्ति के बारे में, कि भक्ति की शक्ति का प्रभाव क्या होता है। जब मैं भक्त नहीं था और मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता था, तो मेरे को चाय का बहुत शौक था, तो घर में जो है अगर चाय बनती थी तो मैंने बोला हुआ था कि जब चाय बना करे ना तो मुझसे पूछो मत करो, बना दिया करो, दैट्स इट। तो मेरा एक बड़ा मग था जिसमें मैं आई यूज्ड टू टेक टी, एडिक्टेड टू टी। कृष्ण भावना मृत ऐसा एडिक्टेड व्यक्ति जो कि पतीले में जो है चाय बना के रखे, थर्मस बना के रखे, फिजिक्स और मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हुए चाय पीता रहे, एडिक्टेड व्यक्ति, यानी कि ऐसी एडिक्शन बड़ी गहरी हो गई ऐसे व्यक्ति के अंदर, राइट। लेकिन भक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि एक दिन में मेरे जीवन से चाय निकल गई, वन डे। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ पाथ ऑफ भक्ति योगा। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं थर्ड चैप्टर में, इवन लेट बिगिनर्स कैन एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल। इवन लेट बिगिनर्स, इन्होंने बहुत बाद में शुरू किया, थोड़ा 50 साल में पहुंच गए, बाल सफेद हो गए, एक दो दांत भी गिर गए, जोड़ों में दर्द है, अब भक्ति में अभी शुरू किया, अभी अब पता नहीं प्रभु जी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब तो जीवन के आखिर में पहुंच गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इवन लेट बिगिनर्स। तो हमारी अनस्टेडीनेस जो है भगवान किस तरह से खत्म करेंगे हमें नहीं पता, हमारी क्या कमजोरी को भगवान, हो सकता है उस कमजोरी को थोड़ा टाइम ले उसको छोड़ने में, हो सकता है कुछ की एकदम खत्म हो जाए, जैसे मेरे केस में चाय का केस था, एक दिन वन डे कि मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो एक दिन जो है मैं जब टेंपल आया तो मुझे जो है भक्तों का संग मिला, जस्ट इन वन डे, दे सेड नो एक्चुअली टी जो है इंटॉक्सिकेंट है, इसमें तो निकोटीन होता है, इसमें जो है कैफीन वगैरह होता है ना, तो इट इज नॉट गुड, और एक्चुअली बिकॉज क्योंकि मैं भक्तों के साथ में थोड़ा समय बिताया, जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट इन वन डे, नेक्स्ट डे आई गिव अप टी, वन डे, वन मोमेंट इन फैक्ट। तो ये जो है भक्ति की शक्ति है। तो इस भक्ति की शक्ति, यानी भक्ति की जो शक्ति है, इसकी शरण लेने का जब प्रयास करता रहता है जीव, तो क्या होता है, वास्तव संबंध धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। एक्चुअली प्रभुपाद जी से स्थिरता का एग्जांपल अगर हम लें, तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार जन्माष्टमी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे टोरंटो में, तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो एक बहुत ही सुंदर अमेरिकन लड़की थी वो खड़ी हुई, कहती है स्वामी जी आई वॉन्ट टू मैरी यू। श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं थोड़ा एजुटेट हो गया, अरे लड़की ने बोल दिया, अरे अब इतनी सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर लड़की। प्रभुपाद जी सिंपल एज इट इज अनडिस्टर्ब, जैसे बता रहा जैसे योगी का चित स्थिर है। प्रभुपाद ने स्टार्ट कैसे किया, प्रभुपाद बोलते हैं माई डियर डॉटर I have already given up household life. You please take to Krishna consciousness. Simple. No passion. Calm. Cool. Shloka Prabhupada. So, jis vyakti ka jo hriday hai, jo sthir ho chuka hai. Humare Gurudev hai, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So, ek kisi jagah se aaye the, bahut, to kafi der ho gayi thi unko jo hai, to sham ke samay, to Maharaj ne kaha ki, ab main thoda rest lunga. तो किसी ने बोला हाँ महाराज थोड़ा अपना रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सो जाइए, आप बड़ा थकावट हो गई होगी। कहते हैं एक मिनट रेस्ट का मतलब आई चैंट हरे कृष्णा, दिस इज माय रेस्ट। हमको भी ऐसा करेंगे कभी नहीं, जिसका चित वास्तव में स्थिर हो गया है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके नाम में, उनके गुणों में उनकी लीलाओं में, ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा स्वाभाविक होता है कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना। उसको सुबह 4 बजे उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता, वो स्वाभाविक उठता है, मुझे हरि नाम लेना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, स्थिर है उसका चित एकदम। तो चित जब स्थिर हो जाता है वास्तव में ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उसके लिए भक्ति के कार्य संघर्ष नहीं होते। तो इसलिए जो है जो भक्ति है उसके दो प्रकार बताए गए, एक है वैधि भक्ति जिसमें कि हम प्रयास करते हैं अरे भक्ति हृदय में आ जाए, भक्ति हृदय में आ जाए बस, और एक और प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि हम भक्ति को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम रागनों का भक्ति कहते हैं। इट इज टू एक्सप्रेस, एक होता है जो है जगाने के लिए, एक होता है कि अब आग लग गई है, उस आग से जो है अब एक्सप्रेशन है, मतलब कि अब वो भगवान की भक्ति को एक्सप्रेस किया जाता है उससे। जब कुकिंग कर रहे हैं या फिर नाम ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें एक राग होता है, उसमें एक अटैचमेंट होती है भगवान के लिए, उसे स्टेडीनेस होती है। और ये स्टेडीनेस तभी आती है वास्तव में क्योंकि भक्ति का जो हायर टेस्ट है उसका भक्त जो है आस्वादन करता रहता है बीच बीच में, भले वो संघर्ष कर रहा है लेकिन कृष्ण इतने उसके शुभ चिंतक हैं, बीच बीच में उसको जो है भक्ति का जो आनंद है उसको उसकी छींटे उसको देते रहते हैं, तो वो जो उससे शक्ति उसको मिलती रहती है, कहते नहीं नहीं मुझे बढ़ना आ गया क्योंकि भक्ति जो है इतनी महान है, ये मेरा बहुत बड़ी कृपा है कि मैं भक्ति मैंने भक्तों की शरण ली, मैं यहाँ पर एक प्रामाणिक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, नहीं 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 मेरे को करना है, मुझे करना है। तो ये हायर टेस्ट उसको जो है ऊपर की ओर लेके आता है, उसको ऊपर की ओर खींचता है, और इस तरह से जाए धीरे धीरे वो स्टडी होता चला जाता है। और फिर वाकई में उसका हाल क्या होता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में ध्यान, आत्म तत्व मतलब वो जानता है, आत्म तत्व यानी कि मेरा तत्व क्या है, मैं जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा के लिए बना हूँ, मैं सेवा का पार्टिकल हूँ, वही जानता है आत्म तत्व में कि ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मैं प्रभुपाद जी से पूछा, एक डिवोटी ने लेटर लिखा हवाई से, श्री प्रभुपाद हवाई में आइए, गर्मियों के दिन है, यहाँ पर आम आए हुए हैं और यहाँ के आम बहुत बड़े और बहुत स्वादिष्ट हैं। और श्री प्रभुपाद उस समय रशिया में थे, श्री प्रभुपाद ने कहा लेटर को रिप्लाई किया कि मुझे कि तुमने आम के लिए मुझे आमंत्रित किया इसलिए धन्यवाद, लेकिन इस वक्त मैं रशिया में जो है भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ इसलिए मैं अभी व्यस्त में नहीं आ सकता, बिना विचलित हुए। तो वास्तव में जिसका चित्त जो है इस तरह से स्थिर हो गया तो वो जो है इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो जानता है ये आनंद तो ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए यही आनंद सब कुछ है, है कि नहीं। दैट्स व्हाई वी गेट टेम्प्टेड, वास्तव में अस्थिरता क्यों होती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये दुनिया में भी जो है खुशियां तो हैं, इतना बुरा हाल भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, भक्ति भी अच्छी है, ऐसा नहीं है बुरा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, तो इसी में वो डोलता रहता है, इसीलिए इस डोलने को जो है अस्थिरता कहते हैं। तो इस डोलने से जब वो जो है स्थिर हो जाता है वास्तव में, इस डोलने की स्थिति से जो निकल जाता है तो उसे स्थिर कहते हैं, और तब जो है उसकी ये स्थिति आती है जब वह एकदम स्टेबल है, वो जानता है मैं सिर्फ मेरा अस्तित्व सेवा के लिए ही है, चाहे मैं गृहस्थ हूं, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी, हर परिस्थिति में मैं कृष्ण का हूं और बस मैं उन्हीं का हूं, वो इस बात से कन्विंस्ड है, वो उनको कोई डाउट नहीं है इस बारे में। इसलिए इस्कॉन में आने के बाद कोई डिवोटी जो है किसी दूसरी संस्था में नहीं आता। आज तक मैंने किसी को एग्जाम्पल, मैंने एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं देखा, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस ही आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए एक बार इस्कॉन में कोई अगर डिवोटी बनता है और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, वो कभी जो है ऐसा नहीं कि भाई यहां से सत्य साई बाबा के पास चला गया, वो कभी नहीं, वहां से वाली यहाँ आया, जैसे मैं आया था, मैंने सत्य साई बाबा के साथ कुछ समय बिताया था मैंने, पर मुझे और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा मैं इस्कॉन में आने से पहले, मेरी जो जद्दोजहद थी आध्यात्म के पीछे। लेकिन फाइनली क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस ये ही, क्योंकि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, तो यहीं पर वहां से स्थिरता आती, यहीं पर आके हम स्थिर होते हैं, बाहर अस्थिर ही रहते हैं। कई ऐसी संस्थाएं जैसे कि वहां पर स्वामी जी आते हैं, प्रवचन देते हैं, उसका छोले भटूरे बिकते हैं, दिए जाते हैं सबको एज अ प्रसाद, सब छोले भटूरे खा के गप्पे लड़ा के घर जाते हैं, कोई स्थिरता नहीं, नथिंग, जो करना है करो। पर स्थिरता जो है वास्तव में कृष्ण भावना में ही आती है, क्योंकि ये ही वास्तविक स्थिति है हमारी। सिर्फ इस स्थिति में जो है हमको और परिपक्व होना है, वी हैव टू बिकम मोर मैच्योर इन दिस रियलाइजेशन। ठीक है, समय हो गया, किसी को प्रश्न हो? Yes, any questions? सकामत स्थिर है यानी कि wonderful, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। Yes, किसी कोई सवाल है? किसी मन गलती से आज थोड़ा स्थिर हुआ हो या ओके, कोई डाउट नहीं है, सबको सबको पता है मन कैसे स्थिर करना है या हो चुका है। हम क्या देंगे, हम तो बदलादा पास से प्रार्थना करते हैं, हम तो यही कर सकते हैं, प्रार्थना है हमारी, तो बस एक ही कहते ना वो उम्मीद है, वो है भगवान के चरणों में की गई प्रार्थना है, उनका नाम, उनके भक्तों का संग, यही हमारा सहारा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ यस। तो अभ्यास जो है यहाँ पर है, भक्ति की जो विधियां हैं वो है अभ्यास। जैसे हरिनाम लेते हैं हमारे लिए अभ्यास है, हम अभ्यास ही तो कर रहे हैं हरिनाम ले सकें, ले पाते क्या? लेते लेते कभी कभी सो जाते हैं, है ना, है कि नहीं? यहाँ कभी सोचते हैं थोड़ा बाद में कर लेंगे, आलस, है ना। तो ये भी एक अभ्यास है वास्तव में, है ना। तो भगवान के नाम के साथ जुड़ना, यहाँ स्क्रिप्चर समझने में आलस करना, ये छोड़ो ना, ये ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ, या फिर पता नहीं क्या लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा, आगे पढ़ते हैं, तो ये अभ्यास है। नहीं, किसने बोला है फिजिकल है? हाँ, ये इसलिए मैंने बोला, या इसलिए मैंने आगे क्या स्पेसिफाई किया कि सिर्फ जबड़ा हिलाने से थोड़ी होगा, यानी कि जब भक्त वास्तव में विनम्रता के भाव से, यानी कि हरे नाम के साथ क्या चल रहा है, विनम्रता का भाव, शरणागति का भाव, कि भगवान मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ, इस भाव के साथ जब हरिनाम किया जाता है तो भगवान अपनी कृपा करते हैं, उस कृपा से मन वश में किया जाता है। क्या चीज? हमें सिर्फ जो है भगवान के नाम को सुनना है शरणागति के भाव से, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो भगवान की कृपा से जो है मन वश में आएगा। वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, कृष्णा कैन कंट्रोल आर माइंड ऑन आर बिहाफ व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, ये है सीक्रेट। हाँ बिल्कुल, ऐसे एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने कहा भाई हमको तो हमेशा हरिनाम लेना चाहिए, सोते हुए तो हम लोग, सॉरी जागते हुए तो चलो हम हरिनाम ले लेते हैं, सोते हुए थोड़ी ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा फिलहाल तो तुम जागते हुए लेने का अभ्यास करो, तुम जागते हुए तो अभी लेते नहीं, सोते हुए लेने की बात कर रहे हो, अभी ये स्टेज तो क्रॉस कर लो भाई, तो जागते हुए तो अभी हम करते नहीं, जागते हुए कर लो, सोते वक्त भी करोगे, डोंट वरी, लेकिन अभी जागते हुए ही नहीं हो रही। अगर जागते हुए अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करता तो सोते वक्त तो वो अगली स्टेज है, वो तो ऊपर की स्टेज है, अभी उसने दूसरी क्लास पास की नहीं, वो पीएचडी की बात कर रहा है। अरे बेटा दूसरी क्लास तो पार कर ले, है ना, तो जागते हुए तो करें, जागते वक्त तो है हम आलस में डूब जाते हैं, राइट, आलस हो गया या फिर कुछ कुछ और कारण हो गए, बहाने हो गए, तो जागते हुए तो करना सीखें। और से कोई सवाल है? अगर मैं किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूँ तो बोलो, प्रभु जी मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि पिछली बार हुआ मैं किसी भक्त को देख नहीं पाया, वो शायद यहाँ के बैठा हुआ था, मैंने यहाँ देखा और मैंने कहा हाँ चलो हो गया है ओवर। तो बाद में ड्यूटी बोले प्रभु जी उसने हाथ खड़ा किया था, कितनी बार आपने उनको बोला नहीं? तो कोई हो जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपनी चार आंखों से भी, तो खड़ा होकर बोल दो। ओके ठीक है श्रील प्रभु, ओके श्रील प्रभु बात की जाए, पर आपका सवाल स्वागत है आपका। यस हाँ 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 एक्चुअली क्योंकि ना चैंटिंग अभी हमारी फेवरेट एक्टिविटी नहीं है राइट। अगर सुबह 5 बजे बोला जाए भाई सुबह सुबह निकलना है हम लोगों को, हमारी फ्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए, मजाल है नींद आ जाए कभी। क्योंकि जिस चीज से मोहब्बत होती है उससे उसमें नींद नहीं आती है, लेकिन हरि नाम से मोहब्बत है नहीं अभी हमारी, है ना? अभी हमारा अभी हाँ तो अभी हमारे कहीं और हमारे जो खूंटे हैं वो अटके हुए हैं, तो सुबह सुबह वही खूंटे कहते हैं अरे क्यों सुबह सुबह उठ गया यार, सो जा, दुनिया सो रही है तुम जगे हुए हो, सो जाओ। मनुष्यों ने किस लिए मिली? सोने के लिए। बाद में सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, बस दूध पियो सो जाओ। हाँ वही कहा ना, क्योंकि अभी रुचि नहीं है ना अभी, इसीलिए हाँ रुचि नहीं है इसलिए। और मॉर्निंग वॉक करते हुए अगर किसी को नींद आती तो उसे वास्तव में जाकर सो जाना चाहिए, वो चलते चलते अगर गिर गया वो, यानी कि उसका जो प्यार है ना तमोगुण के साथ बहुत गहरा है, तो उसको उस मोहब्बत को निभा लेना चाहिए 1-2 घंटे के लिए और फिर उसको चैंटिंग के लिए बैठना चाहिए राइट। लेकिन वैसे इसके वैसे 2 कारण है, एक कारण तो इसका यही है कि हरिनाम में रुचि नहीं है, दूसरा कारण है जो कहीं भक्त नहीं जानते, वो कारण है कि दिल्ली में या शहरों में ऐसी हमारी हवा ऐसी है कि हमको प्यास कम लगती है। आप लोग कितने लीटर पानी पीते हैं? 2 लीटर? 2 लीटर पीते होंगे राइट, 2 लीटर पीते हैं ना, तो ये 2 लीटर जो है बहुत बहुत कम है। 8 लीटर अगर आप पानी पियेंगे तो आपको सुबह नींद नहीं आएगी, 8 लीटर तो बहुत ज्यादा है, तो मैं अंदर खून नहीं रहेगा पानी आ जाएगा नसों में। लेकिन एक्चुअली इसका बायोलॉजिकल रीजन ये है, एक्चुअली क्या हमारा लीवर जो है बहुत जल्दी गर्म होता है, तो लीवर जब गर्म होता है तो वो क्या करता है अपनी वो गर्मी जो है वो अपने सबसे पास के ऑर्गन में भेजता है, वो है हार्ट, और हार्ट क्या कर रहा है ब्लड को पंप कर रहा है पूरे शरीर में। तो अब जो ब्लड है वो भी क्या गर्म हो रहा है क्योंकि हार्ट गर्म हो रहा है ना, ये बायोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, कई बार नींद क्यों आती है तो ये पंप हो रहा है हार्ट, तो सॉरी ये ब्लड है पंप हो रहा है हार्ट से शरीर में जा रहा है, तो शरीर में कौन सा खून जा रहा है? गर्म खून जा रहा है, तो शरीर मतलब दिमाग में भी अब गर्म खून ही जा रहा है। तो उस गर्म जो खून जब गर्म होता है ना सर में, तो शरीर का काम है क्या, शरीर को कूल डाउन करना अगर हीट बहुत ज्यादा बन गई। तो कूल डाउन कैसे करते हैं शरीर को? सो के लेट कर, एक्टिविटी कम करके। तो ये शरीर का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है कि शरीर में खून गर्म होता है तो व्यक्ति को लेट जाना, जैसे कोई थक जाता है कोई काम करके बढ़िया नींद आती है उसे राइट, क्योंकि उसका ब्लड गर्म है। उसी तरह से जो पानी कम पीते हैं, पानी कम पिया तो अफकोर्स गर्मी तो निकली नहीं ना शरीर की, तो शरीर में रहती है वो गर्मी, तो वो उससे खून में जाती है, उससे दिमाग में जाती है, उससे बॉडी रिलैक्स होना शुरू कर देती है और व्यक्ति को नींद आती है हरिनाम में या जप करते हुए। अदरवाइज हरिनाम इतना बोरिंग नहीं है कि लिया और नींद आ गई इमीडिएटली, लिया नींद आ गई। इसका एक कारण है कि यहाँ तो थके हुए हैं आप, और दूसरा क्या है, एक तो नाम रुचि नहीं है, तीसरा कारण ये है कि आप हम पानी कम पीते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा ऐसी है कि आपको प्यास कम लगती है, इसे जबरदस्ती पानी पीना पड़े, पानी पीना चाहिए। ऐसे मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, मैं सुबह जब करते हुए जो है 1-2 लीटर पानी पीता हूं, श्रीमद् भागवतम क्लास में जब बैठता हूं तो 2 लीटर पानी लेके बैठता हूं, तो 4-5 लीटर मेरे सुबह ऐसे हो जाते हैं, बाकी दिन में जो है कुछ लीटर इधर उधर होते रहते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है, वी शुड हाइड्रेट आवर बॉडी, ठीक है, उससे शरीर की गर्मी कम होगी। लेफ्ट हैंड से आकर ही पी लो ना थोड़ा सा, थोड़ा सा लगाना है, अदरवाइज तो हम सब जीनियस है भाई, है ना, थोड़ा पानी पीने में लगा लेंगे अपना कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेफ्ट हैंड से आ करके हो गया, हरे कृष्ण व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब ये कोई बहुत पेचीदा प्रॉब्लम नहीं है, पानी कैसे पीऊंगा, पानी कैसे पीऊंगा है तो बड़ा मुश्किल है भाई, पानी कैसे पीऊंगा, ये बहुत पेचीदा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, फीलिंग थर्स्टी लेफ्ट हैंड से कंटिन्यू। वैसे हम कर लेंगे गाड़ी चलाते हुए, हैं संतरा खा लेंगे, मोबाइल बात कर लेंगे, लेकिन चैंडिंग होते पानी कैसे पिए हैं, बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ बड़ा सिंपल तरीका है, मुंह से निकले कान में जाए बस। वो कहां से निकलता है, कहां जाता है, कौन सी गलियों कूचों से होते हुए, उस बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि ये सब एक्टिविटी कहां है, मन की, मन की है। तो वी आर नॉट टू चैंट ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म, वी आर टू चैंट ऑन कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म। हमें चेतना के धरातल पे जप करना चाहिए, उसका सिंपल फंडा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से निकला कान में डाला। हरि नाम यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है, स्वाहा। टाइम हो गया ना, ठीक है। तो यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कुंड होता है ना, उसमें चीजें डालते हैं ना, आहुति डालते हैं, स्वाहा है ना, पंडित जी करते हैं जैसे कि, तो ये आहुति डाल रहे हैं हम, है ना। उसी तरह से क्या है, यहां से आहुति जाती है, यहां से हरिनाम निकलते हैं और कानों में, ठीक है। तो ये जो पाइप है वो क्या है, मन का है, वास्तव में मन गायब हो गया तो जी बस, हाँ भाई हरे कृष्ण कृष्ण, वो क्या कर रहे हो पता नहीं, रूम हरिनाम ले रहे, राइट। तो दिस इज द थिंग, तो ये पाइप जो है कोर्स मन का रहता है, तो इसलिए आराम से फिर वो जाता रहेगा, राइट। तो इसलिए जो है, इसलिए मन को वश में करना बड़ा जरूरी है, अगर नहीं भी है तो भी करते रहना चाहिए हमें हरिनाम। ये भगवान की जो है वाइब्रेशन, जो भगवान की जो हरि नाम की जो कृपा है वो उनके वाइब्रेशन में है। जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने हिंदी में लेक्चर दिया, तो हिंदी में लेक्चर दिया तो सामने सब उनके इंग्लिश डिसाइबल्स बैठे हुए थे, तो एक डिसाइबल ने कहा प्रभुपाद हमको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आप तो हिंदी में बोलने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने कहा यू स्टिल बी सीटेड बिकॉज दिस वाइब्रेशन ऑफ ग्लोरी ऑफ कृष्णा विल प्यूरिफाई यू। आगे तुमको समझोगे नहीं, पता नहीं क्या बोले प्रभुपाद हिंदी में, नहीं फिर भी ये जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन आपको शुद्ध करेगी। तो अगर आप हरिनाम ध्यानपूर्वक नहीं भी कर पा रहे तो भी हरिनाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन है वो आपको शुद्ध करेगी, ध्यानपूर्वक करेंगे तो और ज्यादा शुद्ध करेगी। तो हमें हर परिस्थिति में, चाहे हम अच्छे से करें चाहे अच्छे से ना करें, लेकिन हमें हरिनाम लेना चाहिए। यस, आपका एक और सवाल था, आपको मैं इसके बाद देता हूँ, ठीक है। आपका सवाल था कुछ, यस ऐसे कि हमारी बीमारी है फ्रूटी मेंटालिटी होता है कि भाई देखो ये एक्शन हुआ है इसका वो फल मिलना चाहिए। मैंने जो है, मैंने अविवा लाइफ इंश्योरेंस में इतने पैसे लगाए थे, इतने परसेंटेज के इंटरेस्ट पे दो साल के बाद मेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए। तो हम सेम मेंटालिटी के साथ क्या आते हैं, हरिनाम के ऊपर आते हैं, हरे कृष्ण ये यार रिजल्ट नहीं आ रहा, कमाल है ये, मजा नहीं आ रहा क्या, क्या दिक्कत क्या है, हरे कृष्ण रूबी से पूछेंगे जब मंडी क्लास में, मजा नहीं आता है। ऐसी क्या हमारी फ्रूटी मेंटालिटी है, फ्रूटी मेंटालिटी मीन्स एक्शन उसके बाद उसका रिजल्ट, एक्शन उसका रिजल्ट। हम लोग इस प्रोसीजर के साथ बंद गए हैं, जम गए इसके साथ, तो वही चीज जो है हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी लेके आते हैं। तो यहाँ हैरानी होती है, यहाँ चल नहीं रहा है फंडा, कमाल है, क्योंकि ये जो फंडा है ये भौतिक जगत का फंडा है, और ये जो फंडा है ये जो है स्पिरिचुअल लाइफ फंडा अलग है, यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, यहाँ बस ये आध्यात्मिक जगत जो है प्रेम का जगत है, जस्ट लव द होली नेम। हाँ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे पंखा होता है ना, पंखा चल रहा होता है, अगर स्विच ऑफ कर दो थोड़े समय उसको मोमेंटम होता है, चलता रहता है वो। यार प्रभु जी बंद नहीं किया आपने, यार बंद तो कर दिया तो चल क्यों रहा है, क्योंकि उसको मोमेंटम है अभी, राइट। तो इससे फ्रूटी मेंटालिटी हमको बताया गलत है, फिर भी हम फ्रूटी मेंटालिटी में सोच लेते हैं कभी कभी, क्योंकि वो अभी पंखा चल रहा है अभी, लेकिन जब स्विच ऑफ हो जाता है तो थोड़े समय बाद पंखा रुक जाता है, राइट। तो सिमिलरली ये फ्रूटी मेंटालिटी धीरे धीरे करके जो है कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। वहां होता है भगवान जो आपको करना है करो भाई, मैं आपका दास, आपको जैसे नचाना नचाओ, आई एम योर डॉग, यू आर माई गॉड, यू मेक मी डांस द वे यू वॉन्ट. तो ये स्थिति जो है पहुंचती है, ऑफकोर्स वो स्थिति पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हमें धैर्य रखना है, मूव ऑन. ये फ्रूटी मेंटेलिटी चली जाएगी, ये कर्म और सिफल, कर्म और सिफल और फल से फिर से कर्म और फिर कर्म से फल, ये जो उसका जो तारा बना है ना, इससे निकलने में थोड़ा टाइम निकलता है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन निकल जाएंगे. यस
ठीक ठीक.
हाँ एक मिनट, कौन सा वाला काम है, बिजनेस वाला काम है या फिर दूसरा वाला काम? बिजनेस वाला काम. ओके. हाँ 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 हाँ. एक्चुअली ना मन की कई स्थिति होती है, भगवान गीता में बता रहे हैं कि जब मन मल्टी ब्रांच होता है, यानी कि बहुशाखा होता है, तो ना उसको फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है. बहुशाखा मतलब उसकी शाखाएं अलग अलग जगह जा रही हैं, एक शॉपिंग की ओर जा रही है, एक व्यापार की ओर जा रही है, घर की ओर जा रही है, अपनी हेल्थ की ओर जा रही है, शाखाएं बहुत सारी शाखाएं उसकी, इसलिए फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुशाखा है अभी. और भगवान ये बता रहे हैं लेकिन जिसकी बुद्धि जो है वन पॉइंटेड होती है, वो जो है अध्यात्म में सक्सेसफुल हो पाता है. तो मल्टी, ये जो बहुशाखा की जो स्थिति है, इस स्थिति में जो है अक्सर व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता. तो जब हमारा मन फोकस नहीं कर पा रहा, हम गीता पढ़ रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, आंखें कहीं और चल रही हैं, एक घंटा हो गया अभी 24 पेज चल रहा है, दो घंटे हो गए अभी 24 पेज खुला हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अपनी रीडिंग को थोड़ा लाउड कर देना चाहिए, या फिर अकेले कमरे में बैठ के ऐसे पढ़े एज इफ आप किसी को गीता समझा रहे हैं, यानी जैसे किसी को समझाते हो ना, आप इनअटेंटिव नहीं होते, राइट? तो अगर गीता अगर पढ़ रहे हैं तो किसी को समझा रहे हैं ऐसे बोलें, ये मत सोचे कि आप कोई बाहर का देखेगा, कोई सामने बैठा नहीं, किसको समझा रहे हैं, बेवकूफ आदमी. डोंट वरी अबाउट दैट, क्लोज द डोर, आप रूम में हैं और पढ़ाई करें, तो इस तरह से पढ़ें जैसे कि आप किसी को समझा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज का श्लोक अगर हमने, आज का अगर श्लोक अगर हमने, हाँ, जिस प्रकार ऊंचा ऊंचा पढ़ना मन में नहीं, मन तो शैतान बच्चे की तरह है, वो है ना, तो ऊंचा ऊंचा पढ़े, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, वायु रहित स्थान यानी जहां पर कोई हवा नहीं है, भले इस तरह की रीडिंग स्लो है, ये रीडिंग स्लो है लेकिन ये इफेक्टिव है. जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, यानी ऐसी जगह यहां पर कोई हवा नहीं है, ओके, में दीपक हिलता डुलता नहीं है, हाँ सही बात है, जिस प्रकार से बिल्कुल हवा रहित स्थान है वहां दीपक चले, हाँ बिल्कुल, यू आर स्पीकिंग इट लाउड, यू आर रीडिंग लाउड, है ना, तो ऊंचा ऊंचा करें. जिस तरह से हरिनाम भी लेते हैं, जिनका मन बहुत ज्यादा भक्त है, दे शुड चैंट लाउड. फिर ऑफकोर्स आपको भक्तों से थोड़ा अलग होकर चैंटिंग करनी पड़ेगी, भक्तों के साथ बैठ के मुश्किल होती है, ऊंचा नहीं कर सकते जब, पर ऊंचा जब करना जो है एक एक तरीका है मन को वश में करने का, कि इतना ऊंचा हो गया वो कि अब जो है मन कह रहा है यार कौन आदमी है मैं, ये हरिनाम मेरे को खींच रहा है बार बार. तो ये जो है लाउडली रीड करना चाहिए गीता को. यहां अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो अपना रीडिंग टाइम जो है एक साथ करते हैं, ये थोड़े कदम कानन महाराज की जय. सो वेरी वेरी वार्मली वेलकम, वेरी वेरी रेस्पेक्टफुली वेलकम हिज होलीनेस कदम कानन महाराज, that he has come here to bless all of us with his wonderful association, very purifying association. We are very, very blessed. We very, very warmly welcome His Holiness Kadam Kanan Maharaj. Hari Bol! Hare Krishna Mahamantra bolke Maharaj ka swagat karenge. Please chant Hare Krishna Mahamantra and welcome Maharaj.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
आप शुरू में ऐसे करते हैं लेकिन अंत में मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ क्या क्योंकि मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश करवा रहे हैं ओम ज्ञान तिमरन स्या ज्ञानना सलकया चक्षुर मिनितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपरंतिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदंत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिचादेश तारिणे तो मैं अभी तो चंडीगढ़ और पंचकुला का रथ यात्रा से आया और पटियाला भी मिलते हैं तो थोड़ा लंबा रास्ता कर दिया इसलिए तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आया थे लेकिन इस मायने तो श्रील प्रभुपाद का मायना है श्रील प्रभुपाद इस जन्म में आविर्भाव कर दिया और इस मायने कृष्णा का मायना है मर्ग शीर्ष कार्तिक राधा रानी का मायना है और कार्तिक के बाद तो कृष्ण का मायना है मर्ग शीर्ष इसलिए तो ये मायना कृष्ण का है और कृष्ण और श्रील प्रभुपाद इस मायने में जन्म लेते थे और इस मायने में हम लोग तो प्रभुपाद मैराथन करता है पुस्तक वितरण करता है श्रील प्रभुपाद यहाँ पर दिल्ली में रहता था चिप्पीवादा में वृंदावन से आया और कभी कभी चिप्पीवादा मंदिर में रहता था क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत परिश्रम से बहुत पसीने से कोशिश करते थे इनके पुस्तक पब्लिश करने के लिए पैसा तो नहीं मिला कुछ नहीं प्रभुपाद उस समय बिल्कुल अकेला था इतना तपस्या कर दिया लेकिन प्रभुपाद का मान बिल्कुल बिल्कुल स्थिरता बिल्कुल निश्चय था प्रभुपाद तो कभी कभी को कोई संशय नहीं आया प्रभुपाद बिल्कुल मान में सब तो स्थिर रख दिया मैं भगवान का सेवक हूँ मैं गुरु महाराज जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सेवक हूँ और मैं यहाँ तैयार हूँ हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए और श्री प्रभुपाद शुरू में यहाँ पर तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन करते थे 1944 तो यहाँ पर उस समय में तो पूरा दुनिया में तो युद्ध था और इसलिए तो उस समय में कागज इंडिया में तो रेशन में था और सिर्फ आर्मी के लिए तो रिजर्व कर दिए इसलिए तो बहुत मुश्किल था लेकिन प्रभुपाद जी तो 12 ऑफिसर के सामने गए थे और एप्लीकेशन कर दिया और एप्लीकेशन में लिख दिया तो मेरे को पेपर चाहिए कागज चाहिए क्योंकि वो कागज मेरे लिए जरूरी है युद्ध के लिए वॉर के लिए तो ऑफिसर तो पूछ लिया आप एप्लीकेशन कर दिए लेकिन आपका काम तो कैसा कैसा युद्ध कैसा वॉर में लाभ देता है श्रील प्रभुपाद बता दे मेरा काम शांति देता है तो आपका पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा बस तो ये सब बात ऑफिसर इनको तो पूरा कागज दिया और प्रभुपाद तो 1944 बैक टू गॉडहेड एडिशन बनाया है और हाँ तो और प्रभुपाद जी वो बैक टू गॉडहेड तो पत्रिका यहाँ पर दिल्ली में भी वितरण कर दिया और काफी काफी तपस्या कर दी है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में तो गर्मी के टाइम में प्रभुपाद भी बाहर था और तो इनकी उम्र तो बहुत आगे पड़ता था उस समय इसलिए तो मौसम के कारण से तो मान में चक रहे थे और एक दिन तो गिर गया रास्ते में हीट स्ट्रोक और दूसरा बार एक बुल प्रभुपाद को मार दिया तो इतना बूढ़ा था और इतना तपस्या में यहाँ पर दिल्ली में इनकी पत्रिका वितरण कर दिया बैक टू गॉडहेड। एक बार प्रिंटर इनको बताया जी आप तो पत्रिका करते हैं लेकिन पुस्तक तो इससे अच्छा हो जाएगा क्योंकि पत्रिका लोग तो एक बार देखते हैं ये सब बात तो और नहीं देखता है लेकिन पुस्तक तो रहेंगे इसलिए तो श्रील प्रभुपाद तो कह रहे हाँ ये ठीक बात है सही बात है और श्रील प्रभुपाद उस समय तो इनकी पुस्तक का ट्रांसलेशन काम फिर शुरू करते थे और उस टाइम तो श्रीमद् भागवतम से तीन वॉल्यूम तो बनाया है बाद में वो पुस्तक श्री प्रभुपाद तो साथ ले लिया विदेश में और शुरू में वो पुस्तक से प्रचार कर दिया श्रीमद् भागवतम में। प्रभुपाद तो सबसे पहले अमेरिका में पुस्तक वितरण करते थे एक बार सबसे शुरू में श्री प्रभुपाद एक प्रोग्राम करते थे वाईएमसीए में प्रोग्राम कर दिया और कोई हॉल में था और वहां पर देता था प्रभुपाद तो जल्दी आ गया प्रोग्राम के लिए और पूरा हॉल तो खाली था कोई नहीं आया तो प्रभुपाद सिर्फ देता था और थोड़ा समय के बाद एक आदमी आ गया और प्रभुपाद और वो आदमी तो बहुत बहुत बातचीत करते थे और समय आगे पड़ते थे और ज्यादा लोग आ गया और एक समय प्रोग्राम तो शुरू होता और एक आदमी आ गया और एसी भक्तिवेदंत स्वामी प्रभुपाद आमंत्रित करते थे प्रभुपाद जी तो उस समय वो आदमी को बताया अच्छा अच्छा मैं अभी कुछ जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास ये एक पेटी है आप कृपा है तो देखिए प्रभुपाद जी इस बात तो प्रवचन दिए था और प्रवचन के अंत प्रभुपाद ने कहा मेरे पास भी कोई पुस्तक है कोई मैं भी कुछ पुस्तक अनुवाद कर दिया और तो वे भी साथ ले लिया और वो आदमी को बताया जी आपके पास वो पेटी है इसको खोल दो अंदर कोई पुस्तक है इसको लोग थोड़ा देखेंगे तो वो आदमी तो पुस्तक सारे लोग को थोड़ा देख आता था और प्रभुपाद इस बात तो फिर बताया कोई लोग एक पुस्तक मानता है इनसे ले लीजिए और जी आप कृपा या भी पैसा ले लीजिए और मेरे लिए रख लीजिए और उस टाइम में प्रभुपाद वो आदमी इनकी सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है वो आदमी नहीं जानता था लेकिन प्रभुपाद ऐसे कर दिया थोड़ा मदद करवा दीजिए थोड़ा पैसे ले लीजिए उस समय में वो तो पुस्तक वितरण करते थे आजकल तो पूरा दुनिया में इतना पुस्तक वितरण हुआ है कम से कम 500 million پورا دنیا میں 500 million سے زیادہ, تو بہت بہت بڑا نمبر ہے. اور ایک پستک کافی ہے, شاید ایک دو تین چار پانچ لوگ وہ ایک پستک دیکھتے ہیں, شاید زیادہ. اور کوئی آدمی کسی کا سمبندھ ہے وہ پستک میں ترنت ان کی ہردائے تو پوتر ہو جائے گا, اور ترنت آدھیاتمک جیون شروع ہوا ہے اس سمے سے. یہ شکتی تو ہے پستک میں, ترنت آدھیاتمک جیون شروع ہو رہا ہے. کوئی لوگ پستک ہاتھ میں لیتا ہے اور اس بات دیتا, نہیں 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 چاہیے ہم کو, کوئی بات نہیں. پستک تو ہاتھ میں پکا لیا, ابھی بھی تھوڑا سا پوتر ہوا تھا, اور بھوشیہ میں ضرور پستک لیں گے. تو اس لیے یہ آدھیاتمک پستک اندر تو اتنا شکتی ہے, کیونکہ شیل بھگوان کا سود بھکت اس میں سنکیرتن کرتا ہے. ایک بار شیل پراوپاد کا سیوک اسسٹنٹ پرسنل سروینٹ ہری سوری, تو نے کہا او پراوپاد جی میرا اچھا ہے کچھ باہر جانے کے لیے پرچار کرنے کے لیے. تو پراوپاد بولا تم کیسے پرچار کروا دیں گے, ہاں تم کیسے پرچار کریں گے, تو نہیں چلے گا, ہاں صرف میں پرچار کریں گے, تم تو کیا پرچار کریں گے. اس لیے تو بھکت لوگ بالکل آدھیاتمک یوگیات نہیں ہے. ہمارا بھکتی کہاں پر ہے, ہمارا دل میں کرشنا کے لیے کتنا پریم ہے, اصلی پریم. ہم لوگ صرف ہمارا اپنا جیوان کا لابھ اور ہانی کا دوارا کے وچار ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں میرے اچھا بھگوان ہم کو کچھ آشیرواد چاہیے, کیونکہ میرے جیوان میں کچھ چیز تو اتنا ٹھیک نہیں چلتا ہے, کرپا ہے تو آشیرواد چاہیے. ہاں 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 اس لیے تو ہم لوگ صرف ہمارا اپنا آشیرواد کے لیے کچھ کرتا ہے بھگوان کے لیے. لیکن بھگوان کا سود بھکت تو بالکل دوسرا ہے. بھگوان کا سود بھکت اس دنیا میں آتا ہے سب کو کرپا دینے کے لیے. اور چیتنیہ چرتامرت میں ہم لوگ پڑھتے کہ ایک سود بھکت, صرف ایک سود بھکت کافی ہے پورے برہمنڈ کو بھکتی دینے کے لیے. یہ ہے پورے برہمنڈ کو ایک سود بھکت, اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ اس کون سمستاپن ابھی بھی چلتا ہے شری پراوپاد کا آدھار اوپر. پراوپاد جی اتنا سمرپن کر دیا, پراوپاد جی کا ادھارن ہمارا سمجھ تو ہے, اور ہم لوگ صاحب دیکھتے ہیں ایسے والا آدمی تو کیا کر دیا, اتنا سمرپن کر دیا, اتنا سیوا کر دیا, اتنا تپسیا کر دیا پرچار کرنے کے لیے صاحب کو. ٹھیک ہے ہم لوگ بھی کچھ کروا دیں گے, اس لیے تو پراوپاد کا تپسیا اوپر ہم لوگ بھی کچھ کرتے ہیں. یہ بات ہے, آپ نے دل سے کون تیار ہے پرچار کرنے کے لیے, جب پرچار تو ٹھیک ہے, لیکن پراوپاد جی کا اچھا پرچار کرنے کے لیے اتنا بلوانت ہے, اور اس لیے ہم لوگ بھی کچھ کرتے ہیں پورے دنیا میں. میں ہر سال دسمبر مہینے میں کچھ دنیا میں چلاتا ہے, اور سنکیرتن بھکت لوگ کے ساتھ جا رہے ہیں. یوروپ میں سنکیرتن بھکت تو بہت ٹھنڈ موسم میں باہر جاتا ہے. فن لینڈ میں ٹیمپریچر بہت بہت کم, بہت بہت ٹھنڈ ہے, उधर तो बहुत बर्फ आता है ना, मतलब तो थी माइनस 30 माइनस थी माइनस 40 समटाइम्स माइनस माइनस आप लोग जानते 40 प्लस लेकिन 40 माइनस मतलब साफ सफेद बाहर। आप फ्रिज में देखते हैं अंदर फ्रीजर डिपार्टमेंट माइनस 10 तो पूरा दुनिया बाहर माइनस माइनस 25 मतलब साफ सफेद सारा पैर बिल्कुल बर्फ में आता है, मकान बर्फ में आता है, शीशा बर्फ में आता है, गाड़ी नहीं खुलता है, क्यों नहीं, कोई गाड़ी नहीं खुलता है, चाबी अंदर नहीं जाता है, लोग तो कोई लाइटर है तो गर्म करते है, चाबी गर्म करते है, इसे बात अंदर शीशा में सब बर्फ, सुबह बर्फ निकलना, दरवाजा नहीं खुलता है क्योंकि साहब तो बर्फ का बंद कर दिया, इतना ठंडा है। भक्त लोग बहुत कपड़ा लगाते हैं, बहुत 3 जैकेट 12 वाला पेंट्स 3 पेंट्स 12 वाला बूट्स भी 12 वाला और ऐसा बाहर चलाते हैं। और संकेतन दबोती हम लोग देखते हैं फिनलैंड में एक हाथ लाल है क्योंकि वो हाथ में पैसा लेता है, वो हाथ में पैसा लेता है तो इनकी ग्लव तो ग्लव है ना निकालता है पैसा लेने के लिए और हाथ तो तंदर से लाल हो जाता है, इतना तपस्या करता है वो लोग। लेकिन हर साल करता है और कोई लोग तो सब दिन 100 महाबिक बुक्स 100 महाबिक बुक्स करते हैं ऐसे वाला मौसम महाबिक। और वो लोग तो उस देश में लोग तो ये पुस्तक नहीं जानते है, यहाँ पर इंडिया में हम लोग कहते हैं अरे ये तो भागवत गीता है सब लोग जानते हैं कि आए भागवत गीता ठीक है, अभी तो गीता जयंती के लिए आप कृपा है एक गीता ले लीजिए वो ठीक है दूसरे आदमी को दे देना तो कोई बात नहीं लोग तो लेके जाएंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इस देश में पुस्तक वितरण तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि लोग तो गीता जानते हैं, लेकिन विदेश में तो क्या है यही है? कौन है वो कौन है क्या पुस्तक है वो लोग कुछ नहीं समझता है। यहाँ पर इंडिया में हम लोग कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद युद्ध सभा, हाँ सब लोग तो जानते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से नजदीक है कुरुक्षेत्र, तो इसलिए तो दिल्ली में भागवत गीता पुस्तक वितरण करना तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि दिल्ली में लोग सब जानते है सिर्फ तो अरे यार ले लो नहीं हाँ 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 एक तो कुछ सही करना पड़ेगा एक 100 रुपया देना पड़ेगा पैसा नहीं है कोई बात नहीं दूसरा आदमी से ले लो इनको पुस्तक दे दीजिए जाओ कोई है तो कोई आदमी तैयार है ये पुस्तक लेने के लिए मैं साइन करवा देंगे लेकिन 100 रुपया देना पड़ेगा कोई है हाँ उधर चलो एक मिनट ठीक है नो ये बुक दे दीजिए दे देंगे एडवांस मिल जाएगी ले लीजिए क्या वो तो संगठन तो होती नहीं है पहले तो एडवांस लेने पड़ेगा भाई पुस्तक आ रहे हैं ना और कलम हमारा तो बिल्कुल तैयार है पुस्तक आ रहा है मैं तुरंत दस्तखत दे देंगे बस ठीक है। तो इंडिया में ऐसे चलता है क्योंकि लोग इंडिया में तो पुण्यात्मा है दिल में अभी भी इच्छा है कुछ पुण्य करने के लिए तो इच्छा है ये तो इंडिया में कोई मुश्किल नहीं है सिर्फ एक मुश्किल में है इंडिया में लोग इनके दिमाग में इतना चक्राते तो अभी नहीं जानते क्या सच है क्या सच नहीं है इधर एक स्वामी उधर एक स्वामी इधर एक मंदिर उधर एक मंदिर एक कहते यही सवाल है चलो यहाँ पर चलो हमारा सत्संग में आइए हमारा मंदिर के लिए कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग सोचते कौन जानता है मुझे नहीं मालूम। और इसलिए तो काफी लोग इंडिया में अल्टर में हम देखते हैं कि एक इंडिया में एक बस और अल्टर समान है, मतलब बस में तो ज्यादा लोग है, अल्टर में भी ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, ज्यादा पिक्चर, ज्यादा देवता आता है, हा? क्योंकि इंडिया में लोग नहीं जानते कौन है भगवान, नहीं मालूम, लेकिन ठीक है कोई आशीर्वाद मिल जाएंगे, ठीक है मैं पिक्चर रखवा नहीं, नोए वाला तो बहुत सुंदर है, ठीक है नोए वाला तो बहुत अच्छा है, आपके इंतजार करने तो आपको कुछ फायदा दिया, क्योंकि दे तो नोए एडिशन है आजकल तो आधुनिक वाला बहुत सुंदर बना है, और एक आखिया अभी पूरा पेटी आखिया भक्त लोग को बहुत उत्साह आती है।